नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने डीजल विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इससे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। यह अगले 2 महीनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और एलपीजी तथा पीएनजी की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी या उससे अधिक क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। एलपीजी वी हैव अ ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के वैश्विक साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान डॉ जयशंकर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठकें की और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी रुकावट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय खुद इसका असर झेलने का विकल्प चुना है। सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों को निर्दिष्ट श्रेणी से निकालने और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है। इसे जीवन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्यसभा में आज वित्त विधेयक 2026 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में विधेयक पेश किया। इसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशि का भुगतान अविनियोग अधिकृत करने का प्रावधान है। चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सुधारों को ध्यान में रखकर वित्त विधेयक तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस ने सरकार को वित्त विधेयक में विभिन्न घटकों को शामिल करने में मार्गदर्शन दिया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मुक्त अर्थव्यवस्था से हर वर्ग को लाभ मिले। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने आज तुंगस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद और P-8I दीर्घ श्रेणी समुद्री टोही विमान के निरीक्षण के लिए 858 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना के लिए 445 करोड़ रुपए के तुंगस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध रूस की JSC रोसोबोरोन एक्सपोस के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक हासिल किए। भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम में स्वर्ण पदक और पुरुषों की व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने कुल पदकों की संख्या में सुधार किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।